हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। सबसे पहले तो हम एक जॉइंट अकाउंट खुल डाते हैं, फिर हम सारी इनकम उसी में डिपॉजिट करेंगे, जो भी हमारे काम से मिलेगी। ये सुनकर राविया के होठों की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अनंत और राविया बैंक चले गए। शाम के वक्त माधवी किसी से कॉल पर बातें कर रही थी और वो गुस्से में चिल्ला रही थी। तुमने ऐसा कौन सा पॉइजन दिया जो अभी तक काम ही नहीं कर रहा है? मुझे 15 दिन हो गए हैं लगातार विहा को वो दवाई देते हुए, उसके बावजूद उसे सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द होता है और वो उसे दर्द को सह लेती है। इससे तो मेरा काम नहीं होने वाला है, सामने से रश्मि ने डरते हुए कहा। मेरे पास जो दवाई थी मैंने तुम्हें दे दी थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रश्मि की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। उसे बेहद दुख हो रहा था कि उसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो कितने सारे पाप कर रही है। उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। माधवी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम कोई चालाकी कर रही हो तो समझ लेना तुम्हें तुम्हारी बेटी के इतने टुकड़े मिलेंगे कि तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगी कि वो तुम्हारी बेटी है या कोई और। रश्मि ने तब अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अगले ही पल वो और भी ज्यादा रोते हुए बोली, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही दवाई दी थी और वो 15 दिन के अंदर बहुत अच्छे से असर भी करने लगती है। विहा का बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। ये सुनकर माधवी ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी दवाई काम कर लेगी तो फिर बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल ठीक रहेगी। ये सुनकर रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर गिरने लगे। माधवी ने भी कॉल कट कर दिया और अब वो सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखने लगी। वहीं विहा के कमरे में विहा अपने नए ऑर्डर्स को देख रही थी जो अभी अभी डिलीवर होने वाले थे। उसके पास डिलीवरी बॉय का कॉल भी आ गया था, इसलिए अब वो अपना फ़ोन लिए धीमे कदमों से सीढ़ियों से नीचे जा रही थी ताकि बाहर से ऑर्डर ले सके। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उन बच्चों के कपड़ों को देखने के लिए कि वो किसी सर्वेंट को ऑर्डर लेने के लिए नहीं भेज पा रही थी। वो बस उन्हें खुद से लेकर जल्दी से देखना चाहती थी। उसने फ़िलहाल एक गाउन पहन रखा था जो कि स्लीवलेस था, बिल्कुल किसी मैक्सी की तरह, जिस पर फ्लोरल डिज़ाइन बने हुए थे। वो दोनों हाथों से अपने गाउन को संभालते हुए दरवाजे पर पहुंची। थोड़ी देर बाद ही वहां डिलीवरी बॉय की बाइक आकर रुकी। डिलीवरी बॉय ने विहा को ऑर्डर दिया और फिर ओटीपी लेते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही विहा ने खुश होते हुए कहा, लगता है इसमें लड़की वाले कपड़े आए हैं। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, लड़की और लड़के दोनों के कपड़े मंगवा रही हूँ। पता नहीं कौन से कपड़े वेस्ट जाएंगे और कौन से कपड़े मेरे बच्चे को पहनने को मिलेंगे। इतना बोलकर उसने खुश होते हुए अपने पेट पर अपना हाथ फेरा। ठीक उसी वक्त अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और उसने जल्दी से नीचे बैठते हुए कहा, कितना दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। ये बोलने के साथ ही उसने अपने होठों को काट लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसके हाथ से वो ऑर्डर छूटकर नीचे गिर गया और साथ में उसका फोन भी। फोन को देखते ही विहा के दिमाग में सिर्फ वेदांत का ख्याल आया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर वेदांत को कॉल किया, पर वेदांत फिलहाल अपनी मीटिंग में इतना ज्यादा बिजी था कि उसके पास अपना फोन देखने का टाइम नहीं था। वेदांत तेजी से अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था, तभी जूली तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आई। जूली ने उसे उसका फोन देते हुए कहा, आपकी टोमेटो कॉल कर रही है, 3 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं, मुझे लगता है आपको बात कर लेनी चाहिए वरना वो गुस्सा हो जाएगी और बच्चों की तरह रोने लगेगी। ऐसा लग रहा था जूली को वेदांत से ज्यादा विहा के गुस्से का डर लग रहा था। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, जूली एक काम करो, इस फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दो, मैं आधे घंटे बाद उसे आराम से बात करूंगा और उसे मना लूंगा। फिलहाल मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए हैं इस कंपनी को, अब अगर 10 मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जूली ने गहरी सांस ली और फिर वेदांत के फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। वेदांत भी अपना काम करने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ विहा दर्द से कड़प रही थी। जब बहुत बार कॉल करने पर भी वेदांत ने कॉल नहीं उठाया तो विहा बुरी तरह रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बन गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर से बेहद दूर थी इसलिए घर में भी किसी को आवाज़ नहीं लगा सकती थी। बॉडीगार्ड्स की नज़र भी उस पर नहीं जा रही थी क्योंकि वो दरवाजे के बाहर की तरफ थी। क्योंकि बाइक अंदर नहीं आ सकती थी इसलिए वो ऑर्डर लेने बाहर चली गई थी। कुछ सोचने के बाद विहा ने अनाही के नंबर डायल किया। अनाही जो अपने फ़ोन को देख ही रही थी ताकि रूहान को कॉल कर पाए, उसने जैसे ही देखा कि विहा उसे कॉल कर रही है उसने तुरंत कॉल उठा लिया। उधर से विहा ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्रधान से बात करवाओ ना, उसे कहो कि वो मेरे पास आ जाए, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए, ऐसा लग रहा है कुछ देर वैसे ही दर्द रहा तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर अनाही के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग बस अभी आ रहे हैं, बस 5 मिनट दो। इतना बोलकर अनाही ने जल्दी से अपनी फाइल बंद की और फिर तेज कदमों से अपने केबिन से निकलकर वेदांत के केबिन में गई। वेदांत तो अपने काम में बिजी था। उसने गुस्से में कहा, अनाही तुमसे कितनी बार कहा है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनाही ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विहा दर्द से तड़प रही है, उसे आपकी जरूरत है। अगर आपके काम की वजह से मेरी बहन को कुछ हो जाएगा तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वेदांत ने जैसे ये सुना उसके चलते हाथ रुक गए। उसने हैरानी से अनाही की तरफ देखा जो कि रो रही थी। अनाही इतनी जल्दी रोना शुरू नहीं करती है जब तक कि कोई बड़ी बात ना हो। उसे रोता देखकर वेदांत का दिल भी बैठ चुका था। वो जल्दी से उठा और फिर अनाही के हाथ से फोन छीनते हुए बोला, हेलो टोमेटो, आई एम सॉरी बच्चा, बस अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर वेदांत अपने केबिन से बाहर की तरफ दौड़ गया। अनाही भी अपने आंसू पोंछते हुए तेज कदमों से उसके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर बाद ही वेदांत और अनाही गाड़ी में बैठे थे। साथ में वेदांत ने डॉक्टर को कॉल कर रखा था ताकि वो उनसे भी पहले घर पहुंच पाए। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर निमानी हाउस के सामने पहुंच चुकी थी, पर टैक्सी से उतरते हुए जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि विहा वहां बेहोश थी और उसके शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। ये देखते ही डॉक्टर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। वो विहा के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोली, विहा विहा एक बार आंखें खोलने की कोशिश करो, देखो मेरी तरफ। पर विहा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। थोड़ी देर बाद ही वेदांत की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों एक साथ निमानी हाउस के सामने आकर रुके। वेदांत ने जैसे एम्बुलेंस को देखा उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया। वो लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ और विहा को देखते ही दो कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, पर गिरने से पहले ही अनाही ने उसे संभाला। अनाही ने भी जैसे ही विहा की तरफ देखा उसने चिल्लाते हुए कहा, विहा,
और फिर दौड़कर डॉक्टर के पास गई। वेदांत तो उसके करीब भी नहीं जा पा रहा था, उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। एम्बुलेंस से नर्स निकलकर बाहर आई। उन्होंने विहा को स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर उसे एम्बुलेंस के अंदर ले गई। अनाही ने जब देखा कि वेदांत कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो उसके पास जाते हुए बोली, हम भी हॉस्पिटल चलेंगे, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। अनाही की बात सुनकर वेदांत जैसे होश में आया। वो जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल जाने लगे। उन दोनों की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे और गाड़ी में एक अजीब सी शांति पसरी थी।